ओम शांति। मधुबन की इस परिवर्तन भूमि में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज की इस रात्रि क्लास में हम आदरणीय उर्मिला दीदी जी का भी स्वागत करते हैं। उर्मिला दीदी 1981 से ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। सन 1985 में आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं हेतु समर्पित किया। आरंभ के 10 वर्ष आप चंडीगढ़ में विशेष सेवाएं देते रहे। उसके पश्चात आपने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में भी अपनी सेवाएं दी और आप सब अवश्य ही ज्ञानामृत पत्रिका पढ़ते होंगे। आपका लेख बहुत ही सुंदर विचारों से सजा हुआ होता है जो हम सबके अंदर जाता है। उस ज्ञानामृत पत्रिका की आप सह संपादक हैं। एक हरियाली पत्रिका आती है त्रैमासिक, आप उसकी भी सह संपादक हैं। आपने अपनी बेहद सेवाएं इस ईश्वरीय यज्ञ को दी हैं, देते रहे हैं। जो बहुत सारी यात्राएं पहले हो चुकी हैं, महिला सशक्तिकरण की, भारतीय युवा साइकिल यात्रा हो चुकी है, उसका भी आपने कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया है और आप बहुत कुशल राजयोग प्रशिक्षिका हैं। आइए अब हम सभी आदरणीय उर्मिला दीदी जी से ईश्वरीय ज्ञान रत्नों को सुनते हैं अनुभव सहित, जो हम अपने अंदर धारण करेंगे। उर्मिला बहन जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पिछली मुरली में बाबा ने सब रोगों की एक दवा बताई, कौन सी? मेरा बाबा। ये शब्द है तो बहुत छोटा लेकिन बड़ा चमत्कारी शब्द है, क्योंकि जब हम कहते हैं बाबा मेरा, तो बाबा का जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरा। और अगर हम गिनती करने लगे कि बाबा का क्या क्या है तो वो गिनती भी अनगिनत हो जाती है। भगवान मालिक है, जिन चीजों का, जिन गुणों का, जिन शक्तियों का, तो उन अनलिमिटेड बेहद की प्रॉपर्टी के हम सब मालिक हो गए। इसलिए बाबा कहती हैं कि आप बच्चे बालक भी हो और मालिक भी हो। तो जब मेरा बाबा कहती हैं तो अपने बालकपन का भी एहसास होता है और मालिकपन का भी एहसास होता है। बालकपन का एहसास तो भक्ति मार्ग में भी होता है, जब कहती हैं तुम माता पिता हम बालक तेरी, ये पुराना एहसास है। इसलिए जब ज्ञान मार्ग में आती हैं तो दिन में कई बार बाबा बाबा बोलते हैं, अपने बच्चे होने का अनुभव करते हैं। और सेवा में भी बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसे कहा है, बाबा की श्रीमत ऐसी है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाबा कहती हैं बालकपन में भी दो बातें हैं, एक निश्चय और एक नशा। मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये निश्चय तो है, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती का मैं बालक हूँ, ये नशा भी उतना ही चाहिए। जैसे लौकिक दुनिया में कलेक्टर के बच्चे को कितना नशा होता है, राजा प्रधानमंत्री के बच्चे को, राष्ट्रपति के बच्चे को, थोड़े दिन पहले एक समाचार आया था कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री का बेटा जयपुर में आया और उसने जयपुर में आकर के एक एक अधिकारी को ऐसे ऑर्डर देना शुरू किया जैसे उसका पिता अपने राज्य में देता है। तो वो तो खैर नेगेटिव था क्योंकि वो नशे के साथ साथ ईगो भी आ जाता है, लेकिन हम बच्चों का तो प्योर नशा है, कल्याणकारी नशा है, लेकिन वो नशा इमर्ज रहे, दिखाई दे कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ जो सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान करता है, मैं उसका बच्चा हूँ, जो सारे जगत का कल्याण करता है मैं उसका बच्चा हूँ। तो मैं कितना भाग्यवान हो गया, ऐसे बाप का बच्चा, डायरेक्ट बच्चा, उसकी हर चीज का उत्तराधिकारी बच्चा। तो बाबा कहते हैं निश्चय भी हो और साथ में फखुर भी हो, नशा भी हो। और फिर बालक होने के साथ साथ मालिक भी हैं, तो मालिकपन का भी नशा हो। इसलिए बाबा ने ये भी कहा है कि आप डबल मालिक हैं। संगम युग पर आप स्वराज्य अधिकारी हैं और साथ साथ बाबा के दिए हुए सर्व खजानों के भी मालिक, डबल मालिक। और बाबा ये भी कहती हैं कि मैंने जो खजाने दिए वो ऐसे खजाने हैं जो मेरे हर बच्चे को 100% मिल सकते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में तो प्रॉपर्टी 100% सब बच्चों को नहीं मिल सकती, बंटवारा हो जाएगा, दो होंगे तो 50-50 मिलेगी, चार होंगे तो और बटेगी, 10 होंगे तो 10% हर एक को मिलेगी। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि बाबा के करोड़ों बच्चे बाबा की पूरी संपत्ति के पूरे पूरे मालिक बन सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो बाबा कहती हैं आपको ऐसे मालिकपन का एहसास होना चाहिए कि मैं डबल मालिक हूं। स्वराज्य का भी और बाबा के खजानों का भी। लेकिन बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि स्व के ऊपर राज्य करने की जब बात आती है ना, तो एक शक्ति हमेशा धोखा देती है और उसका नाम है मन। इसलिए बाबा ने महामंत्र दिया, मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो तो ये धोखा नहीं देगा। ये सूक्ष्म सा मन चंचल बहुत है, तो ये क्या करता है, जब कोई भी व्यर्थ बात, व्यर्थ दृश्य, व्यर्थ घटना दिखाई देती है, आंखों से, कानों से सुनाई देती है, तो मन उसको झट पकड़ लेता है और बुद्धि अगर कमजोर है तो पकड़ने में मदद करती है। तो मन ने उस बात को पकड़ा, बुद्धि ने उसमें सहयोग दिया और दोनों ने मिलकर के जो किया वो संस्कार बन गया। और बार बार ऐसा होता है तो वो पक्का संस्कार बन जाता है और फिर उस संस्कार के ऊपर मेरेपन का ठप्पा लग जाता है, ये तो मेरा है। तो जब संस्कार में मेरापन आ जाता है तो फिर बाबा मेरा, वो तो हल्का पड़ जाएगा। जब कोई भी बात मन तक जाती है तो जाती तो इंद्रियों के माध्यम से है ना, या तो आंख से देखेंगे या कान से सुनेंगे या स्पर्श करेंगे। अब अगर वो बात कड़वी है, नापसंद है, तो आंख में उसका कोई दर्द नहीं होता, जबकि गई आंख के थ्रू ही है, और कान में भी उसका कोई दर्द नहीं होता, जबकि गई वो कान के थ्रू है। दर्द कहाँ होता है? अंदर जाकर के होता है। आत्मा दुखी होती है। क्यों दुखी होती है? क्योंकि वो अपनी सीट पर नहीं होती। जैसे जब युद्ध होता है तो सिपाही मोर्चे बनाते हैं और उनको आदेश होता है कि मोर्चे के अंदर खड़े रहो, अगर गोली आएगी तो वो ऊपर से निकल जाएगी। अब कोई लापरवाह सिपाही हो, मोर्चे को छोड़ दे तो गोली आएगी तो क्या होगा? लगेगी ना। तो जब उसको आदेश है मोर्चे में रहो तो क्यों नहीं रहा? तो इसी तरह से आत्मा को आदेश है कि तुम अपनी सीट पे बैठी रहो, सीट पे सेट रहो और अपने स्वमान में रहो। लेकिन वो सीट छोड़ देती है, स्वमान को भूल जाती है, तो आंख या कान के माध्यम से जो गोली अंदर गई वो लग जाती है, फिर तिल मिलाती है, दुखी होती है, तड़फती है। और उस बात को पकड़ के बैठ जाती है। हालांकि वो बात पकड़ने लायक नहीं है, सुंदर नहीं है इतनी कि उसे पकड़ा जाए, क्योंकि पकड़ने की चीज तो सुंदर, अच्छी, बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन उस कुरूप और भद्दी बात को भी पकड़ के बैठ जाती है और कोई समझाए कि इसको छोड़ दो तो कहती है कि मैं तो छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये छूटती नहीं। तो जो चीजें उसे पकड़नी चाहिए उन्हें छोड़ देती है और जो नहीं पकड़नी चाहिए उन्हें पकड़ लेती है। उलट हो गया, क्योंकि सीट पर नहीं थी। इसलिए स्व के ऊपर स्व का राज्य रहे तो दो चीजें, एक स्वरूप की स्मृति और एक सीट की स्मृति। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं और भ्रुकुटी मेरी सीट है। ये दो बातें अगर पक्की हैं तो बाहर से चाहे व्यर्थ बातें जाएं, कुछ भी जाए अंदर, वो पास से गुजर जाएंगी, उसको हिलाएंगी नहीं। और चूंकि वो सीट पर बैठी हैं तो उस गुजरती हुई बात को देखेगी और क्या विचार आएगा, जाने दो, होने दो, लेट गो, भुला दो, मैं अपनी सीट पर सेट हूं, सुरक्षित हूं, मेरा कोई अहित कर नहीं सकता। इस तरह के विचारों में डूबी हुई वो बात को आते जाते देखेगी, घटना को घटते देखेगी, लेकिन आनंदित रहेगी, निश्चिंत रहेगी। और अगर सीट से उतर जाएगी तो उस खराब बात को पकड़ लेगी। को बार बार अपने को चुभोती रहेगी, दुख को बढ़ाती रहेगी चिंतन कर करके। इसलिए परिस्थितियों में सुरक्षित रहना हो, दुख से बचना हो, तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी सीट को ना छोड़ें। ये हमारा संगम योगी सिंहासन है। और बाबा कहते हैं जो इस समय सिंहासन पर जितना लंबा बैठेगा ना, सतयुग में भी उसको उतना ही लॉन्ग सिंहासन मिलेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ गई ना सिंहासन पे बैठने की। नहीं तो यहाँ वो बैठा नहीं तो सतयुग में कैसे बैठेगा, वहां भी फिसल जाएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, स्वराज्य ही विश्व राज्य दिलाता है। जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो एक बहुत अच्छे विद्वान थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो उन्होंने तो स्वराज्य भारत की आजादी को कहा, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे ही जन्म हुआ स्व के राजा बन गए, तो मन को, बुद्धि को और संस्कारों को नियंत्रित करने का तरीका है स्वमान की सीट। फिर स्वमान तो बहुत सारी हैं, मैं किसका बच्चा हूँ, कितना भाग्यवान हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है, स्वमानों की तो लंबी लिस्ट है। और अगर वो लिस्ट भी याद ना हो तो भी जो आत्मा का मूल रूप है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आनंदित आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वमान भी बाबा ने हम बच्चों को बालक भी बनाया और मालिक भी बनाया, लेकिन मालिकपन किस बात में है? बाबा के जो खजाने हैं उनके हम मालिक हैं। लेकिन जब कोई छोटी सी भी व्यर्थ बात अंदर चली गई और वो संस्कार बन गया और वो पक्का हो गया, तो ऐसे बार बार व्यर्थ बातें अंदर जाती रहती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार खड़े हो जाते हैं। कोई पर चिंतन का संस्कार, व्यर्थ बोलने का, व्यर्थ सुनने देखने का, और कई तरह के हो जाते हैं। और फिर एक गलती क्या होती है कि मान लीजिए अपने किसी संस्कार की पहचान हो गई कि मैं खाने में आसक्ति रखता हूँ, या मैं सुस्ती रखता हूँ, या मैं, मेरी दृष्टि कहीं अटकती है या मैं कानों के कहीं अधीन होता हूँ, मान लो ये जांच भी लिया, परख भी लिया, लेकिन परखने के बाद फिर क्या कहती हैं कि आज तो चलो हो गया, कल से इसको नहीं होने देंगे। फिर कल आ जाता है तो कल आज से भी ज्यादा उलझ जाता है मन, फिर अपने को दिलासा देते हैं नहीं कल से ऐसा नहीं करेंगे, तो वो कल आता ही नहीं है। और वो पहचानने के बाद भी संस्कार और कड़े से कड़ा होता जाता है। तो वास्तव में एक तरह से तो हम अपने आप को दिलासा देते हैं, लेकिन ये दिलासा नहीं होता, ये अपने आप को धोखा ही देते हैं, क्योंकि कमजोरी को छूट दे रहे हैं और वो फिर बिल्कुल ही हमारी पकड़ से छूट जाती है। तो यहाँ चाहिए दृढ़ता की शक्ति। पहचान में आया और दृढ़ता के बल से वही समाप्त कर दिया, तो फिर संस्कार नहीं रहेगा और ना ही मेरा संस्कार है ये कहने का मौका आएगा। नहीं तो संस्कारों की भी बहुत बड़ी गठड़ी हो जाती है और मेरा मेरा, हर बात में मेरा मेरा, कहां तो मालिक बन के भगवान की प्रॉपर्टी को मेरा मेरा कहना था और ये उल्टा हो गया, उस गठड़ी को मेरा मेरा कहते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं आप राम के बच्चे हो, शिव बाबा के बच्चे हो, तो आपका हक आपके पिता की चीज पर है, रावण की चीज पर तो आपका हक है नहीं। और ये जो संस्कार निर्मित होते हैं ये तो सारे ही रावण वाले संस्कार निर्मित होते हैं, झूठ है या परचिंतन है। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण बच्चे कहते हैं कि हम किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन बाबा ने कहा था कि ज्ञान मार्ग में हत्या का भी अर्थ क्या है, अगर भगवान की दी हुई दिव्य बुद्धि दिव्य विवेक उसको दबा करके मन मत के वश, संस्कार के वश, परमत के वश ऐसा कुछ करते हैं तो भी हमने अपनी अंतरात्मा को या दिव्य बुद्धि को नष्ट किया। तो बाबा ने कहा था वास्तव में तो ये भी अंतरात्मा की हत्या है, दिव्य विवेक की हत्या है। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे कहते हैं कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक तरफ तो कहते हैं सब कुछ तेरा और फिर कहते हैं मेरा, एक तरफ कहते हैं मैं ट्रस्टी हूँ मेरा कुछ नहीं है, फिर कहते हैं नहीं मेरा ही है। तो बाबा ने कहा ये भी तो देख करके लेना हुआ ना, झूठ हो गया ना। और ऐसे ही बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण बच्चे कहते हैं हम चोरी नहीं करते हैं, लेकिन रावण की चीजें उठा लेते हैं, इकट्ठी करके रखते हैं, गठड़ी बांध के रखते हैं। वो चीजें कहाँ से आई आपके पास? बाबा कहते हैं मैंने तो आपको देके भेजा नहीं था, सतयुग में जब मैंने आपको भेजा तो इनमें से कोई भी चीज आपको दी नहीं थी, तो कहाँ से आई? चोरी की है ना। तो देखो आध्यात्मिक भाषा में जो कमजोरी के संस्कार हैं, नेगेटिव संस्कार हैं, वो भी चोरी है क्योंकि वो रावण की दौलत है, उठाया इकट्ठा किया और मेरा मेरा किया। और फिर बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं कि हम ठगी नहीं करते और धोखा नहीं देते, तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करेंगे थोड़ा और दिखावा करेंगे बहुत ज्यादा, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, तो ये भी तो धोखा है ना। और मुख से कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, बाबा के आगे क्या क्या कहेंगे और प्रैक्टिकल में फिर क्या करेंगे, तो ठगी सी को कहती है ना, जैसे दुकानदार कपड़ा दिखाता कोई और है और फिर गठड़ी में कोई और घटिया वाला बांध देता है, इसको ठगी कहती है, दिखाया कुछ और किया कुछ और। तो ऐसे ही बाबा से वायदा किया कुछ और प्रैक्टिकल में किया कुछ और, तो बाबा ने कहा ये क्या है। तो ये जो संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं इनको फिर हम मेरा कहते हैं, तो इनसे बहुत अटैचमेंट हो जाती है, इनको छोड़ना चाहते हैं तो भी ये चिपके रहती, कहते हैं इतने दिन तक तो हमको दिल से लगा के रखा अब हमें क्यों छोड़ते हो, तो ना वो जाना चाहते ना हम छोड़ना चाहते, तो परिणाम क्या निकलता है। वैसे तो कहते हैं रावण को जला दो, फिर उसकी राख को भी उठा के नदी में बहा दो और देखो रावण के बाल बच्चों को इतना प्यार से दिल से लगा के रखा हुआ है, तो ये तो क्या हो गई, दुश्मन के साथ दोस्ती हो गई। तो बाबा ने कहा जैसे ही पहचान आए कि ये कमजोरी है तो तुरंत उस कमजोरी का परित्याग करो दृढ़ता के साथ, नहीं तो अगले दिन वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, अगले दिन और बड़ी हो जाएगी और फिर ज्यादा बड़ा रूप देख के दिल शिकस्त हो जाएंगे कि ये तो इसको तो मिटाना बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ा रूप है, तो इसलिए जब छोटा रूप था ना तभी मिटा देना था। फिर बाबा कहती हैं कि मन भक्ति मार्ग में भी अलौकिक दुनिया में भी इसको घोड़ा कहते हैं, मन घोड़ा है और ये चंचल तो है ही, तेज भी बहुत है, गति इसकी बहुत तेज है, लेकिन इसको रोकने के लिए जो लगाम है ना वो बहुत शक्तिशाली है और वो है श्रीमत की लगाम। तो जब कोई भी सवार घोड़े पर बैठता है तो लगाम पकड़ के बैठता है ना, तो आप मालिक को और मन सहित सर्व कर्मेंद्रियां आपके कर्मचारी हैं, मन इन सारे कर्मचारियों का लीडर है, तो अगर मन वश में है तो ये सारे कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी वश में रहेंगे, और मन को वश में करने का साधन है लगाम और वो लगाम है श्रीमत की। तो बाबा ने कहा श्रीमत केवल ये नहीं है कि भाई पवित्र जीवन बनाओ, लेकिन श्रीमत तो हर कदम के लिए मिली हुई है, उठो तो कैसे, बैठो तो कैसे, सोना है तो कैसे, खाना है तो कैसे, संबंध निभाने हैं तो कैसे, पहनना है तो कैसे, तो ये जो हर पल के लिए श्रीमत मिली है इस लगाम को पकड़ के रखो। लेकिन बाबा ने कहा कई बार होता क्या है कि लगाम पकड़ने वाला ही साइड सीन देखने लगता है, मान लो कोई घोड़े पे बैठा जा रहा है और रास्ते में बंदर का तमाशा चल रहा है तो वो बेचारा खुद ही बंदर का तमाशा देखने लगा तो लगाम छूट गई और घोड़ा भाग गया। तो मन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बुद्धि अगर वही लगाम को ढीला छोड़ देती है और दाएं बाएं साइड सीन देखने लगती है तो मन को तो मौका मिल जाता है, भाग जाता है। इसलिए सवार भी एक्टिव हो और लगाम भी टाइट पकड़े, तब ये वश में रहता है। तो बाबा ने कहा इसकी चेकिंग बार बार करो कि ये अब कहाँ है, भाग तो नहीं गया, और देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भागा और इसने सारी इंद्रियों को कर्मचारियों को मिला करके अलग ग्रुप बना लिया। आजकल दुनिया में ऐसा होता है कि लोग अलग ग्रुप बना लेते हैं, अलग मीटिंग करते हैं, गुप्त गुप्त अलग षड्यंत्र रचते हैं, और ऐसा सब कुछ करके जो गद्दी पर बैठा होता है उसकी गद्दी छीन लेते हैं और खुद मालिक बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो कहीं ये मन ऐसा करने में तो नहीं लगा हुआ कि सारी इंद्रियों को अपने पीछे लगा करके षड्यंत्र रच करके और आपको गुलाम बना लिया और खुद मालिक बन बैठा। आप श्रीमत की याद दिलाते हो सुनता ही नहीं है, उठाना चाहते हो उठता नहीं है, जगाना चाहते हो जागता नहीं है, मुरली याद करने के लिए बोलते हो याद नहीं करता है, परम धाम जाना ले जाना चाहते हो वहां नहीं जाता है क्योंकि इसने अपना गुट बना लिया और इंद्रियों के साथ मौज मस्ती में लगा हुआ है, कहीं देखने में, कहीं खाने में, कहीं घूमने में, पहनने में। इसलिए बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आता है कि बाबा अपनी इंद्रियों का रोज दरबार लगाते थे और अपने मन से पूछते थे कि हे मन मंत्री आज सारा दिन तूने क्या क्या किया, तो वो अपनी रिपोर्ट सुनाता था कि आज मैंने ये किया। तो जब वो अपनी रिपोर्ट सुनाता था तो आत्मा मालिक देखती थी कि ये कहीं ऐसी वैसी जगह तो नहीं गया। अगर चेकिंग नहीं करेंगे तो जाएगा, चेकिंग करेंगे तो नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास पक्का करो, सोते समय रोज एक बार दिन भर का चार्ट जरूर देखो, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया, क्योंकि चेक नहीं करेंगे तो वो कर्म अगले दिन फिर हो जाएगा, और अगर चेक करेंगे सावधानी लेंगे तो अगले दिन होने से बच जाएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो बच्चे रात को अपना चार्ट देखते हैं या लिखते हैं तो वो धर्मराज की सजाओं से बच जाते हैं, क्योंकि चार्ट देखेंगे लिखेंगे तो सावधान रहेंगे, नहीं तो लापरवाही में वही कर्म फिर होता रहेगा। और रात को चार्ट लिखेंगे देखेंगे सावधानी बरतेंगे सारे दिन का, किसी को दुख तो नहीं दिया, बाबा ने कहा ये तो मोटी चेकिंग है, ये महारथियों की चेकिंग नहीं है, सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं त्याग तपस्या और सेवा, तो त्याग की सूक्ष्म परिभाषा क्या है, त्याग की सूक्ष्म परिभाषा है कि मैंने महिमा का त्याग किया, सुविधा का त्याग किया, मान शान का त्याग किया और प्रकृति दासी बन करके मेरे ऊपर न्योछावर हो रही थी तो मैंने उसका त्याग किया, किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना माना त्याग मूर्त नहीं रही। और इसी तरह से तपस्या, बाबा कहते हैं मोटे रूप में तपस्या नहीं, लेकिन तपस्या का सूक्ष्म रूप ये है कि मेरा तो एक शिव बाबा, एक के सिवाय कहीं मेरा मन गया तो नहीं, किसी को सहारा बनाया, किसी से आश रखी। और बाबा ने कहा जहाँ त्याग और तपस्या होती है वहाँ सेवा अपने आप आकर्षित होकर के चली आती है, बुलानी नहीं पड़ती, ढूंढनी नहीं पड़ती। तो सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। सारा दिन की दिनचर्या में मैं त्याग मुहूर्त होकर के रहा रही, अगर त्याग मुहूर्त नहीं होंगे, किसी से अपेक्षा है, किसी से इच्छा है, किसी से कामना है, किसी ने कामना पूरी नहीं की, किसी से नाराजगी है, किसी से अटैचमेंट हो गई जिसने पूरी कर दी, तो ये तो साधारण जीवन हो गया। लेकिन कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, सूक्ष्म इच्छा भी नहीं, ये चेकिंग करना है। सारा दिन में किसी इच्छा कामना के वशीभूत नहीं हुए, सूक्ष्म सी इच्छा कामना भी नहीं आई, डिटैच रहे, न्यारे रहे, स्वरूप में टिके रहे। फिर बाबा कहते हैं अच्छा दुख किसी को दिया नहीं, ठीक है, लेकिन सुख कितनों को दिया, ये चेक करना है। कुछ दिया, देने से जमा होगा, दुख नहीं दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सुख कितनों को दिया। कोई हिसाब किताब तो नहीं बना किसी के साथ, क्योंकि पुराने खाते खत्म करने हैं, नया नहीं बनाना किसी से, नया नहीं जोड़ना। तो बाबा कहते हैं जब इस तरह से मन की चर्या का अवलोकन करेंगे तो फिर अगली सुबह योग भी बहुत अच्छा लगेगा। अवलोकन भी किया, उसको फुल स्टॉप भी लगा दिया, सावधानी भी दे दी और बात को खत्म कर दिया बाबा को देख करके। इसलिए बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही, मेरे को तेरे में बदल दो। तो चार्ट चेक किया और जो भी कुछ था वो तेरा कर दिया, सब कुछ तेरा समर्पित कर दिया, खाली हो गए। तो अगली सुबह बहुत अच्छी होगी, हल्के होकर के उठेंगे और शिव बाबा से बहुत अच्छी प्राप्तियां करेंगे। जैसे बर्तन होता है ना, तो रात को क्या करते हैं सब लोग अपने अपने घरों में, उसको रात को मांज करके सोते हैं। तो रात को बर्तन मांज दिया, सुबह उठेंगे तो स्वच्छ बर्तन हाथ में आएगा और उसमें आप कुछ भी करेंगे तो आनंद आएगा स्वच्छ बर्तन में। अगर रात का यूं ही झूठन लगा हुआ बर्तन पड़ा हो, सुबह उठाएं तो मन कैसा होगा, और क्या करेंगे उसमें, चाय बनाएंगे क्या या नाश्ता बनाएंगे क्या, झूठे बर्तन में मजा ही नहीं आएगा। इसलिए ये बुद्धि भी क्या है, जैसे बाबा कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो ये बुद्धि भी तो एक बर्तन है ना, और सारा दिन सुबह से शाम तक इस बर्तन में पता नहीं क्या क्या डलता रहता है, खट्टा भी, मीठा भी, नमकीन भी, चरचरा भी, मिर्च वाला भी, सब तरह का डलता रहता है। तो अगर रात को इसको मांझ के सोएंगे और सुबह साफ सुथरे बर्तन को उठा के भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान इसमें डालेगा ज्ञान, गुण, शक्तियां। लेकिन हमने साफ किया ही नहीं और यूं ही उठा के भगवान के सामने रख दिया, इसमें डाल दो कुछ, तो भगवान भी क्या कहेगा, इसको मांझ के तो ले आ कम से कम। इसलिए रात को ऐसे सो जाएं जैसे अंतिम समय की अंतिम घड़ियां हैं, परम धाम जा रहे हैं, सब कुछ भुला करके। बाबा ने कहा था जो बच्चे ऐसी स्थिति में सोते हैं तो उनके जो स्वप्न है ना वो भी बाबा की याद के और बाबा की सेवा के होते हैं, और ऐसी नींद भी वास्तव में पुरुषार्थ में गिनती हो जाती है। भक्ति मार्ग में उसको योग निद्रा बोलते हैं। तो अगर स्वप्न में भी बाबा ही थे और बाबा की सेवा ही थी तो वो भी तो जमा हो गया, तो डबल पुरुषार्थ हो गया। दिन में जागते भी जमा हुआ और रात को सोते भी जमा हुआ, तो आत्मा जल्दी संपन्न और संपूर्ण बनेगी। एक भी बात अपने पास नहीं रखनी, सब दे करके बिल्कुल खाली हो करके हल्के फरिश्ते बन करके फिर वतन में जाने का। इसी को बाबा कहते हैं संगम युग में ही जीवन मुक्ति है। वो लोग तो कहते हैं जीवन से मुक्त कर दो, लेकिन बाबा कहते हैं जीवन में रहते मुक्त हो जाओ। शरीर भी है पर शरीर के होते आत्मा निकल गई इसमें से और सुबह इसमें फिर आ गई। अगर डिटैच नहीं होते तो जीवन बंध में है, डिटैच हो गए तो जीवन मुक्त में है। इसलिए सेकंड का खेल है, जीवन बंध में आना या जीवन मुक्ति में आना। तो अमृत वेले जब उठेंगे बाबा से वरदान लेंगे और सुबह सुबह जब वरदान ले लेंगे तो सारा दिन वरदानी बन करके रहेंगे। सारा दिन बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमारी सारी दिनचर्या अमृत वेले के योग पर आधारित है। वो जितना पावरफुल है दिनचर्या उतनी ही अच्छी है। अगर वो मिस हो गया तो उसका दिन भर का योग बेशक कितना भी अच्छा हो फिर भी अमृत वेले वाली कमी को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं अमृत वेले का 5 मिनट का योग और दिन भर का भले 5 घंटे का भी योग हो तो भी बराबरी नहीं। इसलिए बिल्कुल खाली होकर के और इस संकल्प के साथ हम विश्रामी होंगे कि मुझे सुबह वरदाता से वरदान प्राप्त करने हैं, बहुत वरदान प्राप्त करने हैं। ये वरदानी भूमि है, इस वरदानी भूमि में आकर के वरदान नहीं लिए तो फिर भला और कहाँ जाकर के मिलेंगे वरदान। इसलिए अमृत वेले सबको यहाँ आना है। बहुत चुस्ती के साथ, बहुत लगन के साथ और इसी दृढ़ संकल्प के साथ अब हम योग करेंगे कि हम कल का अमृत वेला बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। ऑप्शन